इप्सिता ध्रुव की बात चुपचाप सुनती रही, वो कुछ नहीं बोली। ध्रुव ने देखा कि वो कुछ सोच रही थी, उसने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, फिर से अपने एक्स हस्बैंड के बारे में सोचने लगी क्या? ओ सॉरी, आई मीन एक्स फियांसे, क्योंकि हस्बैंड तो शादी के बाद बनते हैं ना। उसकी बातें सुनकर इप्सिता ने ध्रुव को घूर कर देखा। ध्रुव हंसते हुए बोला, जस्ट किडिंग यार, क्या हुआ, मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया क्या? सॉरी यार, प्लीज डोंट बी सैड। ध्रुव की बातों से इप्सिता का मूड खराब हो गया था। वो एकदम से उठकर खड़ी हुई और बोली, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है, और वैसे भी अब कोई शूट बाकी नहीं है, इसलिए मैं आउटफिट चेंज करके आती हूँ। इप्सिता उठकर खड़ी हुई और चेंजिंग रूम में जा ही रही थी कि पीछे से एक आवाज आई, कंग्रेचुलेशंस मिस इप्सिता। इप्सिता के कानों में वो आवाज पड़ते ही वो चेंजिंग रूम की तरफ जाते जाते रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। ध्रुव भी वो आवाज सुनकर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक 27-28 साल का नौजवान आदमी ग्रे कलर के 3-पीस सूट में खड़ा था। उसके हाथ में महंगी रोलेक्स खड़ी थी और उसने महंगे सनग्लासेस लगाए हुए थे। वो बड़े ही स्टाइल के साथ स्टूडियो के अंदर आया और इप्सिता और ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, तुम दोनों की जोड़ी ने एक बार फिर कमाल कर दिया। ध्रुव खुश होते हुए बोला, थैंक यू बॉस। इप्सिता अपने सामने खड़े उस आदमी की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली, थैंक यू सो मच सर। ध्रुव दोनों के बीच में बोलते हुए अथर्व की तरफ देखते हुए पूछा, बट सर वैसे आप आज मीटिंग करने वाले थे ना? अथर्व एकदम सीरियस होकर बोला, हाँ बिल्कुल, मीटिंग होगी और 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, चलो चलते हैं। और वैसे भी मुझे मीटिंग में तुम दोनों को लेकर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। इप्सिता और ध्रुव हैरानी से अथर्व की तरफ देखने लगे। ध्रुव थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए पूछा, कैसी अनाउंसमेंट बॉस? अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, चलो मीटिंग में चलकर बताता हूँ। फिर उसने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, इप्सिता तुम चेंज करके आओ जब तक हम मीटिंग रूम में पहुंचते हैं। इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर में इप्सिता ने कपड़े बदले और मीटिंग रूम की तरफ जा रही थी, तभी उसने मन ही मन कहा, अब मिस्टर अथर्व को क्या अनाउंसमेंट करनी है, वो इस तरह की बातें बोलकर परेशान कर देते हैं, क्या जरूरत थी उन्हें मुझे बात बोलने की, जो भी अनाउंसमेंट थी डायरेक्ट मीटिंग रूम में ही कर देती तो उनका कुछ चला जाता क्या। इप्सिता अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी, तभी नंदिनी सामने से आई। वो मीटिंग रूम में जाने ही वाली थी लेकिन इप्सिता को देखकर बाहर ही रुक गई और उसके आने का इंतजार करने लगी। इप्सिता धीरे धीरे ये सारी बातें सोचते हुए अंदर आई और उसने सामने खड़ी नंदिनी की तरफ देखा ही नहीं। नंदिनी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? इप्सिता ने नंदिनी की आवाज़ सुनते ही उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं गई थी, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी और सोचा रुक जाओ तुम्हारे साथ ही चलूंगी, वैसे क्या सोच रही थी तुम? इप्सिता थोड़ी परेशान होते हुए बोली, पता नहीं, अभी अथर्व सर ने कुछ अनाउंसमेंट के लिए बोला था तो मैं वही सोच रही थी। नंदिनी ने इप्सिता की बात सुनकर उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, सोचने से थोड़े ना कुछ पता चल जाएगा, उसके लिए तो हमें अंदर मीटिंग रूम में चलना होगा। तुम भी ना कमाल की लड़की हो, और वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम्हें इतना ज्यादा कुछ भी सोचकर परेशान होने की जरूरत है, और वैसे भी तुमने तो अपनी अदाओं से कितने सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, तुम्हारी फोटोज के चर्चे तो तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। इप्सिता नंदिनी की बात सुनकर बोली, अच्छा बस करो, चलो अब हम अंदर चलते हैं। इतना बोलकर उसने नंदिनी का हाथ पकड़ा और सीधे मीटिंग रूम के अंदर चली गई। वहां पहले से ही बाकी सब लोग मौजूद थे और अथर्व अभी भी मीटिंग रूम में नहीं था। इप्सिता और नंदिनी बगल में जाकर बैठ गईं। ध्रुव ने उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, क्या बात कर रही हो तुम दोनों? नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस बातें कर रहे थे। नंदिनी की बात सुनकर निधि ने कहा, बस आते ही होंगे, अभी तो अपने केबिन में किसी से बात कर रहे थे। इप्सिता नंदिनी की तरफ देखकर थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो, किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? नंदिनी ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे अगर पता होता कि बॉस अभी तक आए नहीं है तो मैं थोड़ा लेट आती, पता है मैं अपनी एक मॉडल को बिना रेडी किए आई हूँ, वो बेचारी मेरा इंतजार कर रही होगी, इस एक घंटे में उसका शूट है। नंदिनी की बात सुनकर ध्रुव बोला, अरे तुम्हारी इतनी सारी असिस्टेंट्स हैं, कोई ना कोई देख लेगी, डोंट वरी। नंदिनी, इप्सिता और ध्रुव तीनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और अथर्व सीधे अंदर आया और सेंटर में पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गया। तभी निधि बोली, बॉस ये लीजिए। इतना बोलकर उसने अथर्व के सामने एक फाइल रखी। अथर्व ने फाइल खोलकर कहा, हाँ तो गाइज, आई होप आप सब अच्छे होंगे, और आज सभी को पता चल गया होगा कि इप्सिता ने फिर से यूथ मैगजीन का कवर अपने नाम किया है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर बेस्ट मॉडल मिस इप्सिता। मीटिंग रूम में बैठे सभी लोग इप्सिता की तरफ देखकर ताली बजाने लगे। उन सबको शांत होने का इशारा करते हुए अथर्व बोला, मैं ध्रुव और इप्सिता के काम से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज इन दोनों के ऊपर ही एक छोटी सी मीटिंग रखी जाए, और ध्रुव तुम्हारी सैलरी 20% बढ़ाता हूँ। ये बात सुनते ही ध्रुव काफी खुश हुआ और उसने अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू सो मच बॉस। सब लोग अथर्व की बात सुनकर ताली बजा रहे थे। तभी अथर्व ने इप्सिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और मिस इप्सिता, आपके मॉडलिंग के पैशन को देखकर मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। इप्सिता हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और उसने अपने मन में कहा, ऐसा कौन सा डिसीजन ले लिया है अथर्व सर ने जो वो इतनी ज्यादा खुश हो रहे हैं? उनकी ऐसी मुस्कुराहट को देखकर तो मुझे डर ही लगने लगता है। इप्सिता अपने मन में बातें बोल ही रही थी कि अथर्व बोला, इप्सिता को मैं हमारी एजेंसी का मेन मॉडल अनाउंस करता हूँ। ये बात सुनते ही इप्सिता बिल्कुल शॉक हो गई और नंदिनी खुश होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगी। ध्रुव भी ये बात सुनकर काफी खुश हो गया, लेकिन इप्सिता अब भी शॉक में थी। इसी बीच अथर्व ने पेपर्स फाइल से निकाले और उन्हें इप्सिता के सामने रखते हुए कहा, ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट, अगले 3 साल तक आप हमारी एजेंसी की मेन मॉडल रहेंगी। एक्चुअली मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को और लंबा बनाना चाहता था, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे एक बार तुमसे इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। अगर तुम्हें मेरा ऑफर पसंद आता है तो प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो, और अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंज चाहिए तो जस्ट टेल मी, आई विल चेंज द कॉन्ट्रैक्ट। इप्सिता हैरानी से पेपर्स की तरफ देखने लगी। तभी नंदिनी ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या सोच रही हो, तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, साइन इट। इप्सिता नंदिनी की तरफ देखकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखने लगी। तभी इप्सिता ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच अथर्व सर, बट। इप्सिता बोलते बोलते चुप हो गई और उसकी आवाज में हिचकिचाहट साफ नजर आ रही थी। अथर्व उसे कंफर्टेबल करते हुए बोला, डोंट वरी, तुम्हें जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रख सकती हो और इसे ठीक से पढ़ने के बाद ही साइन करना। मैं नहीं चाहता कि तुम जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लो। इप्सिता अथर्व की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर। अथर्व बाकी सबकी तरफ देखते हुए बोला, और बस आज की मीटिंग के लिए इतना ही। बाकी आप सब अपना अपना काम छोड़कर यहाँ आए उसके लिए थैंक यू सो मच। अब आप सब अपने काम पर जा सकते हैं।
इतना बोलते ही मीटिंग रूम में बैठे सभी लोग एक एक करके वहां से जाने लगे। नंदिनी ध्रुव के साथ उठी और इप्सिता भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर को लेकर मीटिंग रूम से बाहर निकल ही रही थी कि अथर्व ने इप्सिता को रोकते हुए कहा, एक मिनट इप्सिता। इप्सिता अथर्व की बात सुनकर वहीं रुक गई। नंदिनी और ध्रुव इप्सिता की तरफ देख रहे थे। तभी अथर्व बोला, अगर आप दोनों को कोई काम है तो आप लोग जा सकते हैं। नंदिनी ने तुरंत अपना सिर हिलाया और वो मीटिंग रूम से बाहर निकल गई, क्योंकि उसे बाहर अपना काम कंप्लीट करना था। ध्रुव के पास कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका और मीटिंग रूम से बाहर चला गया। इप्सिता इस समय अथर्व के साथ मीटिंग रूम में अकेली थी। अथर्व चलकर इप्सिता के बिल्कुल सामने आकर रुका और उसने बड़े ही प्यार भरी नज़रों से इप्सिता की तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए बोला, आई होप इप्सिता तुम्हें मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर पसंद आएगा, और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है या मेरी किसी भी बात से दिक्कत हो तो तुम मुझे तुरंत बता देना, मैं कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हिसाब से बनवा दूंगा। इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर, बट अभी पहले मैं एक बार कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से देख लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन है, मैं इसे जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती। अथर्व भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तब इप्सिता बोली, सर आपको कुछ और भी कहना है या फिर मैं जाऊँ? अथर्व इप्सिता की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए बोला, सबसे बड़ी बात तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना था, जो तुमने मेरे नाम के साथ साथ मेरी कंपनी का भी नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच मेरे साथ पिछले 5 महीने से काम करने के लिए। इप्सिता उसकी बात सुनकर ओवरवेल्म्ड होते हुए बोली, अरे सर आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और शायद अगर आप मुझे अपनी कंपनी में ना लेते तो मैं आज इस पोजीशन पर ना पहुंच पाती। अथर्व इप्सिता की ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे मुझे तुमसे एक और बात पूछनी थी। इप्सिता बोली, हाँ सर बोलिए, क्या पूछना है? अथर्व बोला, एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि तुम सच में मेरी कंपनी के लिए काफ़ी लकी हो। जब से तुमने मेरी कंपनी ज्वाइन की है मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तभी मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे साथ ये डील की जाए। इप्सिता उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई और अपने बालों को कान के पीछे करने लगी। अथर्व इप्सिता के चेहरे की तरफ ही देख रहा था और तभी बोला, क्या तुम फ्री हो? एक्चुअली मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारा फोटोशूट खत्म हो गया है और अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो क्या आज हम कॉफ़ी पर चल सकते हैं? एक्चुअली मैं तुम्हारी सक्सेस और इस खुशी में शामिल होना चाहता था, तो क्या अगर तुम फ्री हो तो हम कॉफ़ी पर चलें? अथर्व की ये बात सुनकर इप्सिता ने कहा, ओ गॉड, फिर से वही सवाल, अब आज कौन सा बहाना बनाऊं? इप्सिता थोड़ा सोचते हुए बोली, वो एक्चुअली सर आज हमें थोड़ा अपने पर्सनल काम से बाहर जाना था, किसी और दिन चलें कॉफ़ी पर?